Om Agyanti Mirandhasya Gyananjana Shlaka Chakshura Militam Yena Tasmai Shivaravena Shri Chaitanya Mano Bhishtam Tapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadam Mahyam Rati Svabhadantika Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sab par sab bhakt sab manane wale ho, Nityananda Prabhu ka avirbhav. To aaj humne aap sab ke saath Bhagwan Nityananda Prabhu ke gungan mein do Vaishnav song gaye the. जिसमें से नरोत्तम दास ठाकुर ने जो सॉन्ग लिखा था उसका बहुत सुंदर अर्थ है. दोनों सॉन्ग का अर्थ सुंदर है, लेकिन एक पहले वाले सॉन्ग में, नरोत्तम दास ठाकुर वाले सॉन्ग में नित्यानंद के तत्व का महिमा है, और वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा जो गाया था सॉन्ग उसमें नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन लीला का वर्णन है. तो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे थे कि नित्यानंद प्रभु के जो चरण कमल है वो करोड़ों चंद्रमा की शीतलता प्रदान करने वाले हैं. संसार में हर एक व्यक्ति जल रहा है अलग अलग प्रकार के दुखों से. इसको कई बार त्रिविध ताप कहते हैं. त्रिविध ताप, ताप का अर्थ होता है कि अगर आप मई जून महीने में जो गर्मी होती है उसमें आपको 12 बजे या 12 बजे या कभी 3-4 बजे कभी कड़ी धूप में खड़ा रहना पड़े तो आपकी हालत कैसी हो जाती है ना? आप इसको सहन नहीं कर सकते है ना. या फिर आप पिक विंटर था अभी जनवरी में, उस जनवरी में सुबह 6 बजे खुले मैदान में खड़े रहो सब खेतों के बीच में तो आपकी हालत कैसी हो जाएगी. तो ये जो ताप है, ताप का अर्थ होता है कि दिबानिशी ही आ जले, दिन रात हृदय जलता रहता है. दुख की बात ये है कि ये हृदय का जलना मूर्ख लोग को दिखाई नहीं देता है, या फिर हमको भी नहीं दिखाई देता हृदय का जलना. अर्थात हम जानते हैं कि यहां कष्ट है, हम जानते हैं कि ये करने से कष्ट प्राप्त होने वाला है, फिर भी हम वही कार्य करना चाहते हैं. ये आश्चर्य है. आप समझ लो कि जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चे को पता है कि अगर पंखे में हाथ डालेंगे तो कट जाएगा, या फिर कोई अग्नि है अग्नि में हाथ डालेंगे तो जल जाएगा. तो छोटे बच्चे को भी इतना पता होता है कि इधर हाथ डालने से जल जाते हैं तो दूर चला जाता है. लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमें जब पता है कि इंद्रिय भोग करने से दुख प्राप्त होने वाला है, कष्ट प्राप्त होने वाला है, फिर भी हम उसमें सामने से जाते हैं. जैसे कोई पतंगा अग्नि में बड़ी तेजी से फंस उड़ के भाग रहा हो, उसके अंदर कूद रहा हो अग्नि के अंदर, उसी तरह से हमारी स्थिति है कि हम बड़ी तेजी से माया के शरणागत हो रहे. भक्त अभक्त जो होते हैं, जो भगवान के शरणागत नहीं है, उनको तो खैर पता ही नहीं है. उनको तो इस अज्ञानता के कारण उनको ये पता ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है या फिर इतना बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा. लेकिन जब कोई भक्त माला का जप करता हो और दीक्षा ले लिया हो और उसने हरि नाम का महिमा सुना हो या फिर वो चार नियम का पालन करके भगवान के शरणागत हो गया हो, ये सब जानने के पश्चात फिर नहीं छोड़ सकते उस इंद्रिय भोग के कार्य को, ये उससे बड़ा आश्चर्य। जब युधिष्ठिर महाराज को पूछा गया था कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो क्या कहा था युधिष्ठिर महाराज ने, क्या कहा था? क्या है इसका अर्थ? नहीं, हर एक व्यक्ति जानता है कि सबका मृत्यु होता है, सबका मृत्यु होता है, सबका पता है, लेकिन फिर भी वो बड़ी आशा लगा के बैठा है कि जैसे उसको कोई अपनी मृत्यु है ही नहीं। ये आश्चर्य है, और ये आश्चर्य युधिष्ठिर महाराज तो झूठ बोलते नहीं। इसका अर्थ है कि वास्तव में लोग ऐसा करते हैं, या फिर हम भी उसमें से एक है कि हम जानते हैं कि हमारी मृत्यु अवश्य होने वाली है, फिर भी हम उसके प्रति उजागर नहीं रहते। यह आश्चर्य। फिर हम कहेंगे प्रभु जी वो तो आश्चर्य है ही, तो फिर आश्चर्य रहने ही दो। कुछ लोग कहते हैं कि अगर जब आश्चर्य है ही ये, तो फिर क्या समस्या है, हम लोग माया में फंसेंगे, उसमें क्या है, ये तो आश्चर्य है ही, ये तो शास्त्र बताता है। लेकिन बुद्धिशाली व्यक्ति जो है वो अपने मृत्यु के प्रति उजागर रहता है। तो नित्यानंद प्रभु के चरण कमल हमें शीतलता दे रहे हैं, कोटि चंद्र शीतल, जे छाया है जगत जुड़ा है, सारी जगत जो है सारा उनकी छाया से लाभ प्राप्त कर सकता है। वास्तव में नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही कोई व्यक्ति को राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो सकती है, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय है नहीं। अगर कोई व्यक्ति अकेले कृष्ण को भजता है तो उसको तो कुछ मिलने ही नहीं वाला है। क्या है वो भक्तों ठाकुर गाते हैं, केवल माधव पूजे से अज्ञानी, जो केवल माधव की पूजा करता है वो अज्ञानी है और उसको कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता, उसको भक्ति प्राप्त नहीं होती। राधा अनादर करे से ही अभिमानी, और राधा रानी का अनादर करता है वो अभिमानी, तो उसको तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये दोनों की भक्ति, राधा रानी और कृष्ण दोनों की भक्ति उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जिनको जिस पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है। चैतन्य महाप्रभु ने खजाना खोला है सबके लिए। महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, चैतन्य की कृपा के बिना कोई व्यक्ति अगर ये दावा करता हो कि मुझे राधा कृष्ण की सेवा या उनकी भक्ति में मैं प्रगति प्राप्त किया है, तो वो अज्ञानी है। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा केवल एक ही व्यक्ति के पास है, जैसे कृष्ण की सारी कृपा राधा रानी के पास है, इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा कृष्ण का युगल स्वरूप है, उनकी सारी कृपा एक ही व्यक्ति के पास है, वह नित्यानंद प्रभु। जो निताय की कृपा प्राप्त करता है उसको ही राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सकती है। नितायर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, वृंदावन में राधा कृष्ण प्राप्त निताय की कृपा से ही हो सकता है। कोई चाहे कितना भी बड़ा पंडित हो, कोई भी हो, लेकिन ये सत्य है कि राधा कृष्ण की सेवा या भक्ति केवल नित्यानंद की कृपा के से ही प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो अहंकार से मत्त होता है, वास्तव में अहंकार से मत्त, आप कहेंगे प्रभु जी हम लोग तो थोड़ी अहंकार से मत्त है, हमारे तो घर में गौण थे कि मुंह विग्रह है, मुंह की पूजा करते, तो हम थोड़ी अहंकार से मत्त है। अहंकार से मत्त होने का अर्थ ये नहीं होता है कि हम छाती आगे फुला करके चल रहे, ये नहीं। अहंकार का अर्थ ये होता है कि हम अपने आप को भोक्ता मानते हैं, हम इंद्रिय भोग करना चाहते हैं। भले हम 100% भोक्ता नहीं मानते अपने आप को, लेकिन कहीं ना कहीं 10%, 5% भोक्ता मानते हैं हम अपने आप को, और वही कारण है कि हम इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, और वही कारण है कि हम हमारी पहचान इस शरीर के साथ करते हैं, आत्मा के साथ नहीं करते, और इसी के कारण ये शरीर की भावना में मत्त रह करके हम अहंकार से मत्त रहते हैं। और जो असत्य है, अर्थात जो कुछ हमने इस शरीर के माध्यम से प्राप्त किया है या प्राप्त कर रहे हैं या करने वाले हैं, उसको हम सत्य मानते हैं कि भाई आप जो कहते हो वो शास्त्र की बात है, वो तो किताबों में लिखा है, लेकिन हम तो जी रहे, प्रैक्टिकल जीवन जी रहे, तो हमें अपने आप को विश्वास करें कि आपकी बात को विश्वास करें, वो ऐसा सोचते कुछ लोग। यही तो समस्या है कि असत्य को सत्य मानते हैं, जो हमेशा नहीं रहता आपके साथ, आप उस पर आधारित रहते हो, आश्रित रहते हो। आप भले ही हम धन पर आधारित है, लेकिन ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि धन जो है वो कभी भी समाप्त हो जाता है। अगर धन समाप्त नहीं होता तो कोई मैं समाप्त हो जाऊंगा, कोई तो समाप्त होने ही वाला है ना। तो कोई भी चीज, धन हो या फिर ऐश्वर्य हो, ऐश्वर्य आप चाहे आप हमारे पास बड़ी कोठी हो या बहुत बड़ी गाड़ी हो या फिर कितना भी पैसा हो, कितना भी ऐश्वर्य हो, लेकिन या तो वो खत समाप्त हो जाएगा या फिर हम समाप्त हो जाएंगे, ये बात तो हमें पता होनी चाहिए। इसलिए ऐसी चीजों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित रहना, बहुत ज्यादा मोहग्रस्त रहना, बहुत ज्यादा आसक्त रहना या बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व रहना, इसका परिणाम यह आता है कि हमारी कृष्ण भक्ति में हमारी रुचि कम हो जाती है। यही अहंकार मत हो। से पद से संबंध ना ही चार, उस उनके प्रति जिन्होंने नित्यानंद के साथ संबंध स्थापित नहीं किया, मिथ्या जन्म गलत है, उसका जन्म बेकार, फेंक देने का कोई काम का नहीं। क्यों जिंदा है वो व्यक्ति, वो मर जाए तो भी कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई किसी व्यक्ति का नित्यानंद प्रभु के साथ संबंध नहीं है, ऐसा व्यक्ति अगर मर जाए तो संसार में कोई नुकसान नहीं है, उस पर कोई नहीं रोएगा अगर वो मर गया तो। से संबंध नहीं जा वृथा जन्म गैल होता, सही पशु बड़ो दुराचार, ऐसा पशु बड़ा दुराचारी है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो दो पांव वाला मनुष्य होते होने के बाद भी पशु के जैसा है, इसलिए बड़ा दुराचारी पशु है, बड़ा दुराचारी है ऐसा व्यक्ति। सुनने में कई बार हमें कड़वा लगता है, लेकिन यही सत्य है। निताय ना बोली लो मुखे मोझिलो संसार सुखे, नित्यानंद प्रभु का हम शरण नहीं लेते और नित्यानंद प्रभु का कीर्तन या उनका सेवा में नहीं जुड़ते, और क्या करते हैं, मोझिलो संसार सुखे, हमें संसार के सुख चाहिए, धन का सुख चाहिए, स्त्री का सुख चाहिए, और ये सुख भोगते 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 हमारी जो तरस है वो कभी छिपती नहीं है, वो कभी समाप्त नहीं होती है। मौजूद संसार सुखे, वो निरंतर विषयों का चिंतन करता ही रहता है, विषयों का चिंतन करता ही रहता है, कब कहां से इंद्रिय भोग प्राप्त होगा मुझे। उस व्यक्ति का विद्या और कुल कितना भी बड़ा हो, इससे क्या फायदा, उसको कुछ परिणाम प्राप्त नहीं होता है। विद्या कुल की कौरी बिता, इसलिए नित्यानंद प्रभु के चरण कमल की सदा आस रखनी चाहिए सब भक्तों को। भक्ति विनोद ठाकुर नित्यानंद प्रभु के अंतरंग भक्त थे, वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के भक्त थे, ऐसे तो सभी नित्यानंद प्रभु के भक्त, लेकिन फिर भी इन लोगों ने नित्यानंद के विषय में बहुत काव्य और रचनाएं की है। नित्यानंद प्रभु का सबसे बड़ा महिमा ये है कि वो पात्र अपात्र का बिल्कुल विचार नहीं करते, चैतन्य महाप्रभु भी नहीं करते, लेकिन नित्यानंद प्रभु अधम से अधम व्यक्ति का भी उद्धार कर सकते हैं, ये उनका स्पेशल क्वालिटी है, स्पेशल उनका फीचर है नित्यानंद प्रभु का। कोई व्यक्ति बड़ा अधम बड़ा आदम, कितना भी पापी हो, कितना भी दुष्ट हो, ये जगाई और मधाई जो थे वो इतने दुष्ट थे। जगाई मधाई सही मुझ पापी श्री कृष्णदास कविराज कहते, और तार साक्षी जगाई मधाई, मधाई जगाई और मधाई ब्राह्मणों की हत्या कर देते थे, गायों की हत्या कर देते थे, स्त्रियों का रेप कर देते थे, घर जला देते थे, लोगों का घर जला देते थे, सबकी संपत्ति चुरा लेते थे और बड़े निर्दयी थे। उनके हृदय में कोई करुणा नहीं थी, जैसे आतंकवादी होते हैं ना टेररिस्ट, उनके हृदय में कोई करुणा नहीं होती है, दया नहीं होती, वो किसी को मार सकते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। तो ऐसे जघन्य पाप करने वाले थे जगाई मधाई, और ऐसे जगाई मधाई को नित्यानंद प्रभु ने कृष्ण प्रेम दे दिया। यदि भी नित्यानंद प्रभु को भी प्रहार करके खून पहुंचाया था, सिर पर प्रहार किया था। जब आप सब ऐसे तो जानते ही हो ये बात को कि जब जगाई मधाई का उद्धार हुआ, उसके कुछ समय बाद जगाई मधाई फिर से आए थे महाप्रभु के पास, नित्यानंद के पास, और कहा कि यद्यपि आपने हमारा उद्धार तो कर दिया, लेकिन इस बात को सोच करके मेरा हृदय फट जाता है कि मैंने इन हाथों से नित्यानंद के सिर पे प्रहार किया। ये बात सोचते ही मैं पूरा कांप जाता हूं। इन हाथों से मैंने ऐसे नित्यानंद पर प्रहार किया कि जिन्होंने मेरे सारे पाप कर्म अपने सिर पर ले लिए, ऐसे नित्यानंद पर प्रहार किया। फिर भी हमें कुछ दंड दीजिए प्रभु, कुछ दंड दीजिए। तो महाप्रभु ने कहा कि एक बार तो महानित्यान ने बोल दिया कि तुम्हारा उद्धार हो गया, फिर अब क्या सर्टिफिकेट चाहिए, फिर से बार बार थोड़ी सर्टिफिकेट देना होता है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा मन नहीं भरा और तुम संतोष नहीं, तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारा उद्धार कैसे हुआ है, तो देखो। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना उपवस्त्र जो था कपड़ा शरीर के ऊपर का, वो कपड़ा हटा दिया, और जैसे ही कपड़ा हटाया तो महाप्रभु का गोल्डन कॉम्प्लेक्शन था, सुवर्ण वर्ण थे तो महाप्रभु, लेकिन उन्होंने अपना पीठ दिखाया, पूरा पीठ काला, ब्लैक, पूरा पीठ काला था उनका, महाप्रभु का। और कहा कि देखो, ये सारे तुमने जितने भी पाप किए हैं अभी तक इस जन्म में और पिछले जन्म में, ये सारे पाप मैंने मेरे पीठ पर ले, देखो सब काला हो गया है सब कुछ। तो अद्वैत आचार्य वहां पर, अद्वैत आचार्य वो आप तो श्याम सुंदर बन गए, अभी गौर सुंदर से श्याम सुंदर बन गए। लेकिन फिर महाप्रभु ने कहा कि तुम कीर्तन करो अब। और जैसे उन्होंने कीर्तन शुरू किया तो धीरे 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 जो काला रंग था वो सुवर्ण वापिस बन गया। महाप्रभु ने कहा कि आज के बाद जो वैष्णव की निंदा करेगा उन सबको गिफ्ट में, उपहार के रूप में, जगाई मधाई के जितने भी पाप के परिणाम है उन सबको उपहार प्राप्त होगा, कि किसी ने वैष्णव की निंदा की, वैष्णव का अपराध किया। वैष्णव का अपराध क्या होता है, किसी वैष्णव को जानबूझ करके गलत उनको हर्ट करना है, इंटेंशनली उनको हर्ट करना, दुखी करना किसी वैष्णव को, भक्त को, तो ये अपराध है। तो ये वैष्णव अभी कोई कहेगा प्रभु तो कुछ बहुत बड़े सीनियर वैष्णव का अपराध करे तो ना, बाकी हमारे से छोटे मोटे तो चले ना ऐसे। लेकिन वैष्णव वैष्णव होता है, चाहे वो कोई बड़ा वैष्णव हो या छोटा वैष्णव हो, वैष्णव तो भक्त जो होता है एक चींटी को भी कष्ट नहीं देना चाहता है, तो फिर वो किसी माला जप करने वाले व्यक्ति को क्यों कष्ट देगा, तो वो चींटी को भी कष्ट नहीं देना चाहता है। आज एक भक्त मुझे सुबह मिलने आए थे, वो बता रहे थे कि ऐसा किसी ने कुछ बोला और हमें बड़ा हर्ट हो गया, तो क्या स्टोरी क्या है वो तो भगवान जाने, और अगर उससे मान लेते वो जो बोल रहे वही सत्य है, तो सामने वाला व्यक्ति जो भी है कोई भी व्यक्त, उनको ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए कि जिसके जिसके द्वारा सामने वाले दूसरे भक्त को कष्ट हो, ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको ये ऊपर से ऑथोरिटी के द्वारा ये कहा गया है कि बहुत गंदी तरह से उसका अपमान कर दो या कड़ी शब्दों में बोलो जो कि हमारे सिद्धांत में नहीं आता है, तो अलग बात है। लेकिन आप अपने हिसाब से या फिर किसी को दुखी करने के इंटेंशन से अपराध करते हो तो इसका परिणाम आपको जगाई मधाई के साथ, जगाई मधाई तो अपना सब उतार करके रख दिया साइड में सारे पाप, और तो उद्धार हो गया उनका, लेकिन हम उसके परिणाम के भागीदार बनते हैं। तो नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु है, इतने दयालु है, और विशेष करके जो भगवान के द्वेषी नहीं है, जैसे हम बात कर रहे थे पिछले सप्ताह, जो इनोसेंट लोग होते हैं उनके अपराधों को क्षमा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप चैतन्य महाप्रभु अगर दुना विनाश है जो दुष्कृताम करते तो क्या होता, विनाश है तो दुष्कृताम क्या करते, फिर मुझे भी मारना पड़ता तब तो उनको, सुदर्शन लेकर मेरे पीछे पड़ते ये हटाओ इसको, ये भी तो दुष्कृति है। हाँ, तो हम सभी दुष्कृति है, या फिर मैं हूं दुष्कृति, लेकिन जब महाप्रभु किसी को सुदर्शन से नहीं मारा, लेकिन जब मधाई को मारा पत्थर नित्यान को, तो महाप्रभु उसको सुदर्शन से वध करने को तैयार हो गए, तभी भी नित्यान ने रोक लिया, नहीं, नित्यान के हृदय में इतनी प्रचुर करुणा है, इतनी प्रचुर करुणा है कि इसका कोई माप ही नहीं है। नित्यान का जन्म हुआ था एकाचक्र धाम में, आदाय पंडित उनके पिता थे, लेकिन उनका उद्देश्य तो एकाचक्र में रहना था नहीं, वो तो कृपा बांटना चाहते थे, और हदाय पंडित पूर्व जन्म में दशरथ का अवतार थे, और दशरथ और राम लक्ष्मण के प्रति कितना उनका प्रेम था, तभी नित्यान सोच रहे थे निताई क्या करूं क्या करूं कैसे करूं, यहां से मुझे संन्यास लेना है संन्यास लेना है क्या करूं। तो फिर एक ब्राह्मण उनके इशारे से एक ब्राह्मण आया उनके घर पे सन्यासी, और नित्यान को लेके चला गया, दशरथ को पूछा, आदाय पंडित को पूछा कि आप मुझे अपना पुत्र दे सकते हो कुछ दिनों के लिए, तो बोले हाँ ले जाओ। नित्यान को लेके गए, और फिर नित्यान ने क्या किया, कुछ समय के बाद उनको भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। फिर नित्यान का एक बड़ा अजीब शौक है, मैंने भगवान का अपना इच्छा है, बलराम भी यही किया था, तीर्थ यात्रा करो, प्रभु का एक नाम है तीर्थ यात्रा करो, अर्थात उनको तीर्थ को तीर्थों की यात्रा करना बड़ा अच्छा लगता है, दो तीन दिन इस तीर्थ में रहेंगे, दो तीन दिन उस तीर्थ में रहेंगे, दो तीन दिन इस तीर्थ में, आप लोग की अच्छा लगता होगा ना, है ना, आज तीन दिन जगन्नाथपुरी में रहे, तीन दिन मायापुर में रहे, तीन दिन बद्रीनाथ में रहे, तीन दिन तिरुपति में रहे, तीन दिन उडुपी में रहे, आपको भी अच्छा लगता होगा। बलराम को नित्यानंद को बड़ा पसंद है, तो यात्रा तो किया उन्होंने, लेकिन यात्रा करते करते वो वृंदावन में जाकर स्थिर हो गए। जब वो एकाचक्र में थे तो उन्होंने बचपन में बहुत सारी लीलाएं की थी, जिसमें वो नाटक करते थे, अधिकतर उनका समय नाटक में व्यतीत होता था, ड्रामास करते थे नित्यानंद, तो अर्थात नित्यानंद को ड्रामास बहुत पसंद है। आप भक्तों ने तो अभी ड्रामा काफी समय से किया ही नहीं है, लेकिन आप भक्तों को ड्रामा करना चाहिए। हाँ, भले आपको लगे प्रभु जब तो हमारी उम्र हो गई, अरे उम्र हो गई तो क्या हो गया, मैं जानता हूँ वृद्ध लोग भी ड्रामा तो करते ही, उसमें क्या बता, लाइफ में ड्रामा करते हो तो भगवान के लिए ड्रामा करो, वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो भगवान नित्यानंद प्रभु निरंतर ड्रामा करते रहते, अलग अलग कृष्ण लीला और राम लीला, दशावतार की लीला, लोग सोचते थे इसको पता कैसे पड़ा कि भगवान वराह देव ने कब क्या किया था, ये इनको कैसे पढ़ा, इनको तो कभी भागवत पढ़ा नहीं है खोल करके। तो लोगों को आश्चर्य हो जाता, कल वराह जी का आविर्भाव है, कल वराह द्वादशी है, फिस्टिंग है, फास्टिंग नहीं होता, वराह और वामन जी दोनों दयालु है, और खाओ जितना खाना है, फास्टिंग नहीं होता है, फिस्टिंग है, आज करने का, आज पूरे दिन का फास्ट था, लेकिन कल उनकी कृपा मिलेगी वराह देव। तो इस तरह से नित्यानंद बहुत लीला किए, और बाद में फिर महाप्रभु और नित्यानंद उनका मिलन हुआ मायापुर में, किसके घर पे, नंदनाचार्य के घर पे, गंगा के तट पे, ये बाजू में ही है नंदनाचार्य का घर, वहां पर उनका मिलन। उसके बाद फिर नित्यानंद और महाप्रभु की लीला सब शुरू हुई थी। तो ऐसे कहने का तात्पर्य है कृष्ण हमेशा उन्मत्त रहते, हमेशा उन्मत्त, हमेशा भगवान की लीलाओं में मग्न रहते थे, हमेशा उन्मत्त। कभी श्रीवास ठाकुर कंप्लेन करते रहते थे, ये कैसे व्यक्ति को मेरे पाले लगा दिया, इन चैतन्य महाप्रभु ने, निमाई पंडित ने इसको मेरे घर पे, ये अवधूत सोचा था सन्यासी है, बड़ा अच्छा लगा, अच्छा आदमी होगा, इसका रिस्पेक्ट करेंगे, इसकी पूजा करेंगे, ये तो आता है तो ये घर में पता नहीं क्या क्या करता है, वो बोले गद्दे के बिस्तर के ऊपर चढ़ जाता है और कुत्ता है, नाचता है, और पूरे पूरे घर में राइज 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 उछालता है, और कपड़े भी निकाल देता है अपना, उसको उसको पता नहीं है कि हम लोग गृहस्थ है, हमारे घर में स्त्री है। तो ये इस तरह से ऐसा व्यवहार करता है, हालांकि प्रेम से ये सब बोल रहे थे, बोले इसको कुछ पता नहीं, ऐसा अवधूत को मेरे लगा, मेरे यहाँ लगा दिया, और फिर और कभी स्नान करने चला जाता है सुबह सुबह गंगा के अंदर, तो मुझे उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है, और वहां के जाके सीधा मगर को पकड़ लेता है, उसको आलिंगन कर देता है मगर को, और हम मैं चिल्लाता रहता हूँ पीछे से, हाय हाय बचाओ इसको, कोई बचाओ ये मर जाएगा, लेकिन फिर उसको जाकर के मैं उस पकड़ के लेके आता हूँ। ऐसे नित्यानंद, तो महाप्रभु ने एक बार उनको कहा कि बहुत परेशान करता है नित्यानंद तुम्हें, तो इसको हटा दो, इसको घर में मत रखो, इसको हटा दो। तो बोले नहीं 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 ऐसा नहीं है। फिर एक बार उन्होंने कहा था कि अगर नित्यानंद, श्रीवास ठाकुर कहे थे, अगर नित्यानंद अगर किसी बार में जाए, शराब की दुकान में जाए, और जाकर के वहां फिर भी वो मेरे प्राण ना थे, अर्थात कहने का तात्पर्य कि नित्यानंद पर मुझे इतना भरोसा है कि वो ही मेरे प्राण ना थे, और नित्यानंद हमेशा उनमत रहते थे। एक बार महाप्रभु का दंड तोड़ दिया था, जा रहे थे कहीं पर, जगदानंद और नित्यानंद साथ में थे, महाप्रभु आगे पीछे, महाप्रभु भी साथ में थे, तो महाप्रभु ने स्नान करने के लिए जगदानंद को कहा कि जगदानंद ये दंडा जो है वो तुम उसको संभाल, पहले सोचा नित्यानंद को देता हूँ, बाद में सोचा इसको कैसे दूं इसका क्या भरोसा, तो बाद में सोचा कि जगदानंद को दे देता हूँ। तो जगदानंद को श्रीदंड का संन्यास दंड दे दिया, तो संन्यास दंड दे दिया जगदानंद, तो वो भी महाप्रभु का सर्वंट था, उसको जगह जगह कहते थे महाप्रभु, तो जगह वो पकड़ के, दंड पकड़ के खड़े थे, महाप्रभु स्नान करने गए, नित्यानंद ऐसे पता नहीं उसकी नजर उस दंड के ऊपर गई, तो दंड का उद्धार करना चाहते थे, तो दंड तो निर्जीव वस्तु है, दंड को देखा जगदानंद, दंड रहा तो जरा जगदानंद सोचे कि ये क्यों मांग रहा है, नित्यानंद को मैं दंड दे दूंगा कुछ, अरे लाओ, दे दिया जगदानंद ने, दंड दे दिया, और दंड नित्यानंद दंड हाथ में लेकर बड़ा अट्टहास्य किया, और बोला कि पूरी संसार को जो अपने सिर पर धारण करने वाले है, जो सृष्टि के आदि है, जो सृष्टि को बनाने वाले है, जो संसार को धारण करने वाले, वो तुम्हें धारण करेंगे, भगवान मेरे प्रभु निमाई चैतन्य महाप्रभु उसको वो तुम्हें पकड़ पकड़ के घूमेंगे, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा करके दंड लिया, उसके तीन टुकड़े कर दिया, फेंक दिया पानी के अंदर नदी में, और जगदानंद ऐसा देख रहा था, गया तोड़ दिया बाद में महाप्रभु वहां आए, वहां पर महाप्रभु को कुछ नहीं पता था और नित्यानंद बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, नित्यानंद बिल्कुल बिंदास बैठे थे। जगन्नाथ बेचारा पसीना पसीना हो गया था, डर गया था वो, क्या होगा क्या होगा। और नित्यानंद महाप्रभु वहां पर आए, महाप्रभु का जगदानंद बोला दंड लाओ, तो जगदानंद ने बोलने की शक्ति थी नहीं, बोलेगा क्या बेचारा, उसके पास कोई उत्तर था ही नहीं, तो उसने ऐसा इशारा कर दिया इनके पास मेरे पास नहीं है इनके पास। तो महाप्रभु क्या इनके पास क्या, अच्छा दंड तुमने इनको दिया, इनको दिया। तो महाप्रभु कह रहे थे नित्यानंद मेरा दंड कौन सा दंड, अरे मेरा दंड जो तुम्हें सन्यास का दंड मैंने तुम्हें वो दिया था, वो दंड तो वो आपसे ही टूट गया था ना, क्या आप वो कीर्तन कर रहे थे गिर गए होंगे उसके ऊपर टूट गया था ना, दंड तो टूट गया, दिखाया टूटा हुआ दंड, मेरा दंड तोड़ दिया नित्यानंद तुमने, पहले तो ऐसा बताया कि महाप्रभु आपने तोड़ दिया, आपके गिर गए होंगे उसे तोड़ दिया, बाद में फिर बोला हाँ मैंने तोड़ा है तो क्यों तोड़ा, महाप्रभु क्यों तोड़ा, बोले इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी क्या, ये आप कुछ उठा उठा के घूम रहे थे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, तोड़ दिया। बाद में फिर महाप्रभु कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्या बोले, नित्यानंद ने कहा कि अगर आपको लगता है कि मैंने गलत किया है तो मुझे दंड दे दो, उसमें क्या है, मैं स्वीकार कर लूंगा जो भी दंड दोगे उसको। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को इतना इतने प्यारे थे कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे हालांकि ऊपर ऊपर से नाराजगी दिखाई, अंदर से तो प्रसन्न थे। बाद में उन्होंने कहा कि अब आगे से या तो तुम आगे जाओ या मैं आगे जाता हूं, हम लोग साथ में नहीं जाएंगे। तो नित्यानंद ने स्पॉन्टेनियसली बोल ही दिया आप ही जाइए आगे, हम पीछे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये कहीं रास्ता भूल गए तो इससे अच्छा हम पीछे पीछे जाते। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे हमेशा उन्नत रहते थे, हमेशा उनकी आंखों में करुणा भरी रहती थी, इसलिए वो कभी किसी के ऊपर दृष्टिपात कर भी दे, अगर गलती से भी किसी को देख लिया बस खत्म, उसका उद्धार हो जाता है। गलती से एक बार देख लिया, अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी हम लोग उनकी कृपा का लाभ नहीं ले पाते, और या फिर ऐसा समझ लो कि जो कुछ अभी आप कर रहे हो वो उनकी कृपा के कारण ही कर रहे हो, जो भी हम कर रहे हो, अन्यथा हम, या कम से कम मैं अपने विषय में कह सकता हूं कि मैं पूरी तरह से उनकी कृपा के लिए इनवैलिड हूं, इनवैलिड अयोग्य, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है। लेकिन क्योंकि उनका हृदय इतना विशाल है कि आपकी इनवैलिडिटी भी उनके सामने तुच्छ हो जाती है, इतना विशाल है उनका हृदय, इसलिए वो कृपा करते रहते हैं, क्षमा करते हैं। और इतने दिनों के पश्चात भी, इतने साल के पश्चात भी, अगर आप अभी भी या हम अभी भी अगर ये कह दे एक बार कि जो हो गया उसके लिए मैं बड़ा शर्मिंदा हूं, अब से मैं सुधरने का प्रयास करूंगा, अब से मैं वही करूंगा जो गुरुजी ने कहा है, अब से मैं वही करूंगा जो आपने बताया है, मुझ पर कृपा कीजिए, तो सारी पुरानी बातें भूल जाएंगे, सारी पुरानी बातें भूल जाएंगे, और फिर आपको फिर से पूरा कृपा देंगे 100% पूरा कृपा। ऐसा नहीं कि वे इसको बाद में देना, थोड़ा थोड़ा करके दो, ज्यादा मत दो, ऐसा नहीं, फिर से पूरा कृपा दे देंगे। तो इसलिए समस्या है कि हम शरणागत हो, हम अपने आप को सुधारने का प्रयास करें तो कृपा तो अपने आप होने वाली है। तो विशेष करके हम चर्चा कर रहे थे उस दिन इनोसेंट के विषय में, तो इनोसेंट का अर्थ होता है कि जो भगवान के द्वेषी नहीं है, तो उन लोग को तो हमेशा कृपा देनी ही चाहिए, उनको कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो लोग बेचारे भौतिक संसार में घूमते रहेंगे जन्म मृत्यु के चक्कर में, पिसाते रहेंगे, क्या बोले, चक्की में पिसाते, चक्की में उनका जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहेंगे। इसलिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु की ओर से, नित्यानंद प्रभु के साधन बन के हम औरों पर ये चैतन्य कृपा बांटने का प्रयास करें और उसमें जो कुछ भी हमारी सेवा नित्यानंद प्रभु एक्सेप्ट कर ले, तो आप सोचिए कि अगर वो प्रसन्न हो गए तो आपको संसार में और क्या बचेगा बाकी। तो इससे थोड़ा प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़ेंगे, अवश्य बढ़ेंगे, नित्यानंद प्रभु की कृपा अवश्य होगी। सो वी स्टॉप हियर, इट्स ऑलरेडी लिटिल लेट, स्टॉप।